लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, यूक्रेन में पूर्ण स्तर पर युद्ध शुरू हुए 24 फरवरी को 3 वर्ष पूरे हो गए और इस दौरान आम नागरिकों को निरंतर हमलों, विस्थापन, मुश्किलों, मनोवैज्ञानिक आतंक का सामना करना पड़ा है। उनके साथ रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी उन्हीं कठिन परिस्थितियों को सहन करते हुए पूरे युद्ध काल में एक जीवन रेखा की तरह मुस्तैद रहे हैं। देश में मानवीय सहायता मामलों के लिए यूएन के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि मानवीय सहायता एजेंसियां इस कठिन समय में स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने में जुटी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
24 फरवरी 2022 को रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। यूएन मानवतावादी कार्यालय के अनुसार 2023 की तुलना में 2024 के दौरान हताहत होने वाले आम नागरिकों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। लड़ाई के अग्रिम मोर्चों पर मानवीय हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देश की करीब 36% आबादी यानी लगभग 1,27,00,000 लोगों को इस वर्ष मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और मानवतावादी समन्वयक माथियास श्माले ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया,
We should remember that for 3 years now, civilians in Ukraine have endured continuous attacks, displacement and hardship. We must also remember that this began back in 2014.
Resident coordinator Matthias Schmale कह रहे थे कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 साल से यूक्रेन में आम लोग निरंतर हमलों, विस्थापन और कठिनाइयों को झेल रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब 2014 में शुरू हुआ था। उसके बाद से पैदा हुए बच्चों ने अपने देश में शांति का अनुभव नहीं किया है। माथियस श्माले ने कहा कि हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा जा रहा है, साथ ही उन्हें नकदी सहायता और अन्य अत्यावश्यक सामान मुहैया कराए गए हैं। युद्ध में अब तक 2,500 से अधिक बच्चों की या तो मौत हुई है या वे घायल हुए हैं। 12,500 से अधिक लोगों की जान गई है। 750 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र और 1,500 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र और उसके भागीदारों ने अपने नवीनतम आकलन में कहा है कि इसराइल द्वारा काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा और पश्चिमी तट के पुनर्निर्माण के लिए अगले 10 वर्षों में अनुमानतः 53 अरब $20 करोड़ की रकम की आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र के सहायता समन्वय कार्यालय ने कहा है कि गाजा पट्टी में यूएन सहायता एजेंसियां जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं, मगर जरूरतों का स्तर बहुत अधिक है जिसके लिए तत्काल और निरंतर सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
फिलिस्तीनी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय सहायता समन्वयक मुहन्नाद हादी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को पुनर्निर्माण और आर्थिक बहाली की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी। फिलिस्तीनी इलाकों में आवास एक ऐसा क्षेत्र है जो युद्ध में सबसे भीषण रूप से प्रभावित हुआ है और ये क्षेत्र पुनर्बहाली आवश्यकताओं का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की महानिदेशक एमी पोप ने युद्ध से तबाह गाजा के अनेक इलाकों का दौरा किया है और बताया है कि विनाश का दायरा बहुत व्यापक है।
With the ceasefire in place, many families are finally able to come home only to find that nothing is left.
एमी पोप कह रही थी कि युद्ध विराम लागू रहने के दौरान लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं जहां उन्हें कुछ भी बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत अहम है कि जीवन रक्षक सहायता मुहैया कराने के लिए सभी एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास जारी रहें और युद्ध विराम भी लागू रहे। गाजा के लोगों को अपने घर वापस मिलें और उन्हें गाजा के भीतर ही अपना भविष्य बनाने का मौका मिले।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु अधिकारी साइमन स्टील का कहना है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव का लाभ उठाने के लिए विशेष स्थिति में है और स्वच्छ में निवेश करना रणनीतिक तौर पर और मुनाफे के हिसाब से भी फायदेमंद विकल्प है। उन्होंने गत सप्ताह भारत में एक सम्मेलन में शिरकत करते हुए भारत से अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इस पर विस्तार जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन ढांचा संगठन UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि भारत जलवायु ऊर्जा में निवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि जहां कुछ सरकारें केवल बातें करती हैं, वहीं भारत आगे बढ़कर कार्रवाई करता है।
Almost half of India's current energy mix.
भारत में वर्तमान ऊर्जा आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आता है, जिसमें से अकेले 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से है जो देश के लाखों घरों को बिजली प्रदान करता है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका आर्थिक और सामाजिक फायदा भी है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात हो, लाखों नए रोजगार पैदा करने की, बेहतर स्वास्थ्य, उच्च जीवन स्तर या फिर स्वच्छ सस्ती ऊर्जा की।
संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष जलवायु अधिकारी साइमन स्टील के शब्द।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि भारत सभी अवसरों का पूरा लाभ उठा सके और इसके लिए मजबूत जलवायु योजनाएं और राष्ट्रीय निर्धारित योगदान बेहद आवश्यक हैं।
कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी क्षेत्र में मानवीय आपातकाल की स्थिति, मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन और उत्पीड़न के साथ तेजी से बिगड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बढ़ते संकट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए बुधवार 19 फरवरी को एक विशेष बैठक की। साथ ही DRC के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सहायता अधिकारी ने सभी युद्धरत पक्षों से जीवन रक्षक राहत आपूर्ति को सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अनुमति देने की अपील की। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
DRC के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सहायता अधिकारी ब्रूनो लेमार्किस ने बुधवार को कहा कि विशेष रूप से दक्षिणी किवू प्रांत में युद्ध तेजी से बढ़ रहा है जो नागरिक आबादी पर भारी असर डाल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में युद्ध को रोके जाने और बातचीत बहाल किए जाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसियों ने कहा है कि DRC में जारी हिंसा ने हजारों लोगों को अपना देश छोड़कर अन्यत्र चले जाने के लिए मजबूर कर दिया है। DRC में चल रहे युद्ध के कारण फरवरी के आरंभ से अब तक लगभग 35,000 लोग बुरुंडी में शरण ले चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र की यौन एवं प्रजनन एजेंसी UNFPA का कहना है कि दुनिया के अनेक क्षेत्रों में प्रत्येक दिन औसतन 5 में से हर एक लड़की का विवाह बाल अवस्था में ही कर दिया जाता है। यह एक गैर कानूनी चलन है जिसकी दुनिया भर में निंदा होती है, लेकिन फिर भी यह प्रथा वैश्विक स्तर पर फैली हुई है। एजेंसी ने सभी देशों से बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आग्रह किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
बाल अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह समस्या वैश्विक स्तर पर है। बाल वधुओं की सबसे बड़ी संख्या एशिया और प्रशांत क्षेत्र में है। यह मुद्दा केवल विकासशील देशों तक ही सीमित नहीं है, यह ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भी व्याप्त है। कई देशों ने अपने यहाँ सैद्धांतिक रूप से तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन प्रतिबंध में विवाह की स्वीकार्य आयु को 18 वर्ष से अलग परिभाषित कर दिया है, या फिर माता पिता की सहमति से या धार्मिक या प्रथागत कानून के तहत अपवाद की अनुमति दे दी गई है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय कार्यालय ने 28 फरवरी की सुबह रोम समयानुसार 8:15 बजे पत्रकारों को एक संदेश भेजकर रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती संत पापा फ्रांसिस द्वारा व्यतीत रात का विवरण दिया। पत्रकारों को लिखे संदेश में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों की तरह ही गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात भी शांतिपूर्वक गुजरी और अब संत पापा फ्रांसिस आराम कर रहे हैं। और इसी बीच गुरुवार शाम को इस बात की पुष्टि की गई थी कि संत पापा फ्रांसिस की चिकित्सीय स्थिति में सुधार जारी है। यह भी कहा गया कि पूर्वानुमान को हटाए जाने से पहले नैदानिक स्थिरता के लिए कुछ और दिनों की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस की हालत में सुधार की पुष्टि करते हुए वेटिकन प्रेस की विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने उच्च प्रवाह ऑक्सीजन थेरेपी को वेंटिमास के साथ बारी बारी से लिया। उनकी चिकित्सीय अवस्था की जटिलता के कारण निदान को स्पष्ट करने के लिए और दिनों की आवश्यकता है। यह भी बताया गया कि गुरुवार प्रातः संत पापा फ्रांसिस ने सांस की फिजियोथेरेपी करवाई। दोपहर में एक अतिरिक्त फिजियोथेरेपी सत्र के बाद उन्होंने 10वीं मंजिल पर अपने निजी अपार्टमेंट के आराधनालय में प्रार्थना की और परम प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लग गए। रोम के जमेली अस्पताल में द्विपक्षीय न्यूमोनिया के लिए संत पापा फ्रांसिस का इलाज चल रहा है। ब्रोंकाइटिस की शिकायत के बाद उन्हें शुक्रवार 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार संत पापा सबसे नाजुक दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी जटिल बनी हुई है। इस कारण से पूर्वानुमान अभी भी संदिग्ध बना हुआ है। इससे पहले गुरुवार की सुबह पत्रकारों को भेजी गई सूचना में कहा गया था कि गुरुवार को संत पापा ने अच्छी नींद ली, बिस्तर से उठे और अपनी कुर्सी पर बैठकर उपचार जारी रखा। इसी बीच गुरुवार को ही एक अन्य बयान में कहा गया कि संत पापा के अस्वस्थ रहने की वजह से शनिवार 1 मार्च को जयंती वर्ष 2025 के लिए निर्धारित संत पापा फ्रांसिस के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। रोम में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका के मार्च माह के संस्करण में संत पापा फ्रांसिस ने पितृवत प्रतिक्रिया दर्शाते हुए उस मां को एक पत्र लिखा है जिसने 6 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया था। संत पापा ने मां से कहा कि वे अनवरत मां मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। प्रतिमाह प्याजा सन पियत्रो शीर्षक से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका संत पापा फ्रांसिस को संबोधित एक पत्र का प्रकाशन करती है। इस महीने का संस्करण एक शोकग्रस्त मां द्वारा भेजा गया पत्र था, जिसने 2019 में एक कार दुर्घटना में अपने 21 वर्षीय बेटे को खो दिया था। संत पापा फ्रांसिस को लिखे पत्र में मां सिंथिया ने अपने बेटे की मौत के बाद अपने और अपने पति के द्वारा अनुभव की गई क्षति, दुख और आस्था के संकट की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि आखिरकार उसी साल निष्कलंक गर्भागमन के पर्व पर वह अपने विश्वास में लौट आईं, लेकिन उनके पति नहीं लौटे। मां ने लिखा कि उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक न्यास शुरू किया और रेड क्रॉस के साथ स्वयं सेवक के रूप में काम किया। इसके बावजूद सिंथिया के दिल में कई सवाल थे। पत्र के अंत में मां ने प्रश्न किया, ईश्वर ने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया? क्या वह स्वर्ग में है और क्या वह परिवार का संरक्षक देवदूत है? संत पापा फ्रांसिस ने सिंथिया को दिए उत्तर में लिखा, जिसने अपना बच्चा खो दिया है उसके लिए कहने को मेरे पास शब्द नहीं, यहाँ तक कि सांत्वना देने वाले शब्द भी नहीं, भले ही इरादे अच्छे हों। संत पापा ने मां सिंथिया के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की और बताया कि ये ऐसे शब्द हैं जो उस पत्नी का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपना पति खो दिया है, उस पति का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपनी पत्नी को खो दिया है और उस बच्चे का वर्णन कर सकते हैं जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, किंतु दुर्भाग्यवश जिस माता पिता ने अपना बच्चा खो दिया है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सिंथिया में विश्वास को सुदृढ़ करते हुए संत पापा ने उनसे कहा, हमेशा मरियम से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, मरियम उन माताओं के दर्द को सांत्वना देती हैं जो अपने बच्चों के लिए दुखी हैं, जो एक दिन घर से चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्दोष पीड़ा के रहस्य के सामने कोई भी उत्तर पाना असंभव है और दोहराया कि मरियम ईश्वर की माता हर टूटे हुए दिल के साथ होती हैं। फिर अपने पूर्ववर्ती संत जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों का उल्लेख करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने सिंथिया और उनके पति को आशा रखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि कोई ऐसी बुराई नहीं जिससे ईश्वर अधिक अच्छाई न ला सके। संपूर्ण विश्व में आराध्य फातिमा की रानी मरियम की प्रसिद्ध प्रतिमा जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 11 और 12 अक्टूबर 2025 को रोम में होगी। आराध्य फातिमा की रानी मरियम की मूल प्रतिमा पुर्तगाल स्थित मरियम तीर्थ स्थल से अक्टूबर माह में 11 और 12 अक्टूबर को निर्धारित मरियम को समर्पित आध्यात्मिकता की जयंती के अवसर पर रोम लाई जाएगी। पवित्र कुमारी मरियम की विश्व विख्यात उक्त प्रतिमा आशा जो निराश नहीं करती का प्रतीक है। यह प्रतिमा रविवार 12 अक्टूबर 2025 की सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र ख्रीस्त्याग के दौरान विश्वासियों के बीच मौजूद रहेगी, जो प्रार्थना और चिंतन के क्षण को समृद्ध करेगी। गुरुवार को वैटिकन सुसमाचार प्रचार विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यूखरिस्तीय समारोह के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में प्रवेश निःशुल्क होगा। साथ ही जयंती वर्ष के समारोह में भाग लेने के लिए पंजीकरण इसकी वेबसाइट पर पहले से ही खुला है। सुसमाचार प्रचार संबंधी विभाग के सह अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रीनो फिजिकेल्ला ने कहा, फातिमा की रानी की प्यारी मूल प्रतिमा की उपस्थिति हर किसी को पवित्र कुमारी मरियम की निकटता का अनुभव करने की अनुमति प्रदान करेगी। स्मरण रहे कि पुर्तगाल के फातिमा नगर में पवित्र कुमारी मरियम ने 3 छोटे चरवाहों से वही कहा था जो वे हम सभी को आश्वस्त कर कहती हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरा निष्कलंक हृदय तुम्हारा शरण स्थल होगा और वह मार्ग होगा जो तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। 1917 के मई और अक्टूबर माह के दौरान 6 अवसरों पर पवित्र कुमारी मरियम ने फातिमा नगर के 3 चरवाहे बच्चों लूसिया, जसिंता और फ्रांसिस्को को दर्शन दिए थे। फातिमा की इसी प्रतिमा के मुकुट में उस गोली को भी जड़ दिया गया था जो 1981 में 13 मई को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय पर किए जानलेवा हमले में प्रयुक्त हुई थी। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।